ही शांति। ये है 1492 का अव्यक्त बाप पैदा का क्लास, 1 अप्रैल 1492। हेडिंग ये है उड़ती कला का अनुभव करने के लिए 2 बापों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और इतने ही युक्त योग। आज बाप दादा अपने इतने ही भावना मूर्त आत्मा और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप की प्रिय हैं और दोनों ही बाप से अपने अपने यथा स्नेह और भावना उसी प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी हैं। ज्ञान स्वरूप योगी को आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्वशक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही है। कौन? ज्ञान स्वरूप योगी आत्मा भावना मूर्ति के लिए बताया है तो दोनों ही प्राप्ति स्वरूप, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। इसलिए और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं। याद में रहने का कारण है भावना। बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियां नहीं, क्योंकि भावना दिल की चीज है और ज्ञान सिर्फ दिमाग की बच्चों की बात नहीं बताई। भावना युक्त और ज्ञान युक्त दोनों प्रकार की बच्चे, योगी तु आत्मा और ज्ञानी तु आत्मा और भाव से भी भरे पूरे। तो जो ज्ञान युक्त नहीं है सिर्फ भावना युक्त है, वो सदा और सर्वदा के लिए सर्व शक्तियां प्राप्त नहीं कर पाते। ज्ञान स्वरूप योगी आत्मा सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करते हैं, समानता का अनुभव करते हैं। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, सदा अचल अचल स्थिति का अनुभव योगी तु आत्माएं ही करती है। इसमें ही आत्माएं व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से इतने से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वे सदा विजयी नहीं होते, क्योंकि भावना उसमें जब तक दिमाग की शक्ति जिससे ज्ञान सेट होता है, दोनों का बैलेंस नहीं होगा दिल और दिमाग का, तो पूरी प्राप्ति नहीं होती। इसने ही आत्माओं के मन में मुख में सदा बाबा बाबा है, इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्मा समीप है, भावना वाली आत्मा उतनी समीप नहीं। इसलिए लक्ष्य को भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का, दिल का भी और दिमाग का भी बैलेंस रहे, जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान ये भी संपूर्णता नहीं है क्या? कोई ऐसे भी होते हैं बस ज्ञानी ही ज्ञानी, और रावण ही ब्राह्मण था वो भी ज्ञानी था, लेकिन भगवान के प्रति भावना बिल्कुल नहीं, तो वो भी बेकार। वो ज्ञानी होना उसका व्यर्थ हुआ, तो सिर्फ भावना और सिर्फ ज्ञान ये भी संपूर्णता नहीं है। ज्ञान युक्त भावना, सिर्फ भावना में नहीं बहना है, लेकिन भावना भी ज्ञान युक्त है, समझ पूर्वक। इसलिए संपन्न योगी आत्मा ये दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराते हैं। बाप समान अर्थात दोनों की समानता, बाप समान बाप तो दो हैं, देहद के बाप, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप, प्रजापिता। तो समानता किसने, कौन से बाप में भावना, दिल, दिल निराकार में है, निराकार में दिल, दिल का स्थान कहाँ होता है शरीर में, और दिमाग का स्थान कहाँ होता है। दिल और दिमाग, दिमाग का स्थान कहाँ होता है, ऊपर, और दिल का स्थान नीचे। तो शिव ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा जिसे कहते हैं, उसमें दिल कहेंगे, वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो जिसके पास जो चीज नहीं है उसको वही चीज प्रिय है। तो कौन सा बच्चा विशेष प्रिय है, ब्रह्मा, क्योंकि उसमें दिल, दिल विशेष। इसलिए अगस्तवाणी में बोला कि बुद्धिमानों की बुद्धि बाप को, बुद्धि वाले बच्चे प्रिय नहीं है। कौन से प्रिय है, दिल वाले बच्चे विशेष, क्योंकि जो काला होता है उसे गोरा प्रिय होता है, गोरा होता है उसे काला प्रिय होता है। तो शिव बाबा तो ऐ बुद्धिमानों की बुद्धि, वो किसी के बुद्धि का अहंकार तो क्या देखेगा। लेकिन यहाँ बात बताई गई दोनों होने चाहिए, दिल और दिमाग जिन बच्चों में है वो बाप समान होंगे। तो कौन से बाप समान होंगे, जरूर साकार बाप और मनुष्य आत्माओं का पिता, उसमें दिल भी है तो दिमाग भी है, क्योंकि उसमें दिमागों का दिमागी, बुद्धिमानों की बुद्धि बाप की भी प्रवेशता है, और दिल वाला, दिल वाली जो आत्मा है कृष्ण की, वो भी उसमें प्रवेश होकर पार्ट बजाए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, जो हमारे मात्र पिता है तो बाप समान अर्थात दिल और दिमाग दोनों की समानता। सेवा में वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं ज्यादा आती है, कौन सी आत्माएं कम आती हैं, वर्तमान समय बुद्धिवादी आत्माएं ज्यादा सेवा में नहीं आती, भावना वाली आत्माएं ज्यादा आती। ये आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य की स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। कौन सी आत्माएं, भावना स्वरूप आत्माएं, दिल वाली आत्माएं, धर्म की स्थापना में भी जो देवी देवता सनातन धर्म है, और राज्य की स्थापना में भी आवश्यक तो है। इसलिए अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है। क्योंकि भावना स्वरूप आत्मा है, आगे के समय में वैराग्य व्यक्ति के वायुमंडल के कारण और भी सहजानी में, क्यों उनका आना सहज क्यों हो जाएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन इस दुनिया से आत्माओं को वैराग्य आता जाएगा और ज्ञानी को आत्माओं की तो संख्या ही थोड़ी है, इसलिए सेवा के लक्ष्य में अटेंशन ज्ञानी योगी तो आत्माओं की तरफ ज्यादा होना चाहिए। क्यों? ज्यादा अटेंशन बाप समान बनने वाली आत्माओं के प्रति ज्यादा क्यों होना चाहिए? वर्तमान समय, क्योंकि अब है माला के प्रत्यक्ष होने का समय, तो जो समय विशेष होता है उसका लाभ उठाए लेना चाहिए। जब माला तैयार हो गई, फिर बाप समान आत्माओं का संगठन तो संगठित हो जाएगा, फिर वो समय निकल जाएगा। तो सेवा के लक्ष्य में अटेंशन ज्ञानी और योगी तो आत्माओं की तरफ ज्यादा चाहिए, ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है। अभी तक क्या किया है? मेले किए, सम्मेलन किए, कॉन्फ्रेंस की, तो इनसे वृद्धि किसकी हुई? संख्या की वृद्धि हुई या क्वालिटी की आत्माओं की वृद्धि हुई? संख्या वृद्धि हुई। बाबा की जिन बच्चों में आश्रय है, जिनके द्वारा राजधानी स्थापन होनी है, जो विश्व का राज्य चलाने वाले अधिकारी बच्चे होंगे, उन आत्माओं की तरफ अभी सेवा में किसी का अटेंशन नहीं जा रहा। तो ज्ञानी तू और योगी तू आत्माओं की तरफ ज्यादा अटेंशन चाहिए। समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है, क्योंकि राजधानी में ज्यादा संख्या किसकी होती है? हाँ, राजधानी में तो प्रजा ही ज्यादा होती है, लेकिन विश्व परिवर्तक आत्माएं वो दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं निमित्त बनती है। दोनों स्वरूप कौन से हैं? दोनों स्वरूप भावना वाली और ज्ञान युक्त है, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जिनकी मनन चिंतन और मंथन की गति अति सूक्ष्म और तीखी हो, जो अपनी वृत्ति द्वारा, शेष संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। क्योंकि जैसा स्वयं का वायुमंडल होगा, वृत्ति होगी, अपने संसर्ग और संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी वैसा ही मूल्य कर सकेंगे। स्वयं इसलिए वह भावों का आत्मा स्वयं तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह इसलिए वह भावना विश्व के प्रति नहीं, स्वयं प्रति वह कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। विश्व के प्रति क्यों नहीं होती? क्योंकि इतना ज्ञान उनके अंदर नहीं है। देह की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं, देह की सेवा या विश्व सेवा, ये दोनों की बैलेंस अपना और विश्व का का परिवर्तन और मृत्यु का परिवर्तन, स्व की सेवा और मृत्यु की सेवा, ये बैलेंस चाहिए। ऐसी बैलेंस वाली आत्मा ही मृत्यु का परिवर्तन कर सकती है। और भावना वाली आत्मा ज्यादा किधर मुड़ जाती है? हाँ, अपनी ओर या अपने संसर्ग संपर्क में आने वाली आत्माओं की तरफ, इससे ज्यादा उनका रुझान नहीं होता, मृत्यु प्रति नहीं, प्रेम प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति उनका रुझान होता है। देहद की सेवा व अपना शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा विश्व की सेवा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे भावना और ज्ञान, स्नेह और योगयुक्त ऐसी आत्माएं बने हो, ऐसी आत्माएं बने हो कि इतने ही भावुक आत्माओं को देख करके सिर्फ खुश हो रहे हो, कल्याणकारी बने हो, या देह से विश्व कल्याणकारी बने हो, तो ये अपने में क्या करो। कल्याणकारी मानो सिर्फ संदेश देने वाले, और बेहद विश्व कल्याणकारी कौन बनेंगे? संपूर्ण ज्ञानी की नजर कहाँ होगी? सारे विश्व के नहीं, सारे विश्व के जो बीज हैं, सारे विश्व के जो कंट्रोलर हैं, जो माला के संगठन में प्रत्यक्ष होने वाले हैं, उन आत्माओं विशेष के ऊपर उनकी ज्ञान के आधार पर नजर होगी। तो चेक करो, सिर्फ कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो। तो ब्राह्मणों के लिए बेहद विश्व कौन सा हुआ? 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का विश्व या आधारभूत आत्माओं का विश्व या उन धर्मों के भी जो बीज हैं, हर धर्म के बीज, वो बेहद का विश्व है। क्योंकि तीन विश्व हैं, तीन दुनिया बन चुकी है। एक वो दुनिया जो 500 करोड़ की दुनिया है, दूसरी बेसिक नॉलेज की दुनिया, और तीसरी एडवांस नॉलेज में आने वालों की दुनिया, अर्थात बीज रूपात्मकों की दुनिया। यह तीसरी दुनिया। तो 500 करोड़ की दुनिया के चरित्र स्वभाव संस्कार अगर देखना हो तो साथ में ब्राह्मण परिवार के अंदर देख सकते हैं। इसलिए बाबा ने बोला था, बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी देखना हो तो कहां देखो? यहां देखो। और बड़े से बड़े शिष्टाचारी देखना हो तो यहां देखो, ब्राह्मणों की दुनिया। इसी तरीके से बेसिक नॉलेज से भी ऊपर जो एडवांस नॉलेज की बीज रूप आत्माएं, वो तो फिर सारी दुनिया के ही बाप हैं। आधारभूत ब्राह्मणों के भी वो बाप हैं, और उनमें सब प्रकार की बीज रूप आत्माएं, हर धर्म के बीज समाये हुए। तो दुनिया का छोटा संकट देखना हो तो 108 आत्माओं की माला के अंदर सारी दुनिया का स्वभाव संस्कार और पार्ट का उदाहरण देखा जा सकता है। लेकिन देखेगा कौन? भावना वाली आत्माएं देखेंगी या ज्ञान युक्त भावना के आधार पर चलने वाली आत्माएं देखेंगी? ज्ञान युक्त आत्माएं, योगी तु आत्माएं, ज्ञानी तु आत्माएं। किंतु योग भी बिना भावना के नहीं हो सकता। भावना दिल की चीज है, दिमाग की चीज नहीं। और दिल के बगैर स्नेह पैदा नहीं होता है। क्या इसी से हम योग लगाना चाहें? योग माने लगन, लगाओ, प्रीति, स्नेह पैदा करना चाहे। तो अगर दिल नहीं है और स्नेह करना चाहते हैं तो होगा? जब दिल ही नहीं है तो स्नेह कहां से होगा? इसलिए बोला है एडवांस पार्टी की आत्माओं के लिए, जो सिर्फ बुद्धिवादी हैं, उनमें से ज्यादातर, उनके लिए कि मजबूरी से आपस में मिले हुए हैं, लेकिन स्वभाव संस्कार से आपस में मिले हुए नहीं हैं। तो चेक करो कि कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व के कल्याणकारी बने हो। अगर बेहद विश्व के कल्याणकारी होंगे तो मजबूरी से मिला हुआ होना ये ठीक नहीं है। तो क्या करते हो? क्या रिजल्ट है? बहुत बड़ा ग्रुप ले आए, कितने खुश हो रहे हो? बात ये बात लागू होती है, तो यहाँ भी ये बात लागू होती है। बीज छोटा होता है और वृक्ष विस्तार में होता है। बीज में सार छुपा हुआ होता है और विस्तार में बीज छिप जाता है। जब वृक्ष पूरा बड़ा हो जाता है, सूख जाता है, तो बीज फिर प्रकट होता है। तो जहाँ सार है वहाँ विस्तार नहीं, और जहाँ विस्तार है वहाँ सार छिप जाता है। तो चेक करो कि क्या करते हो, क्या रिजल्ट है। बाप दादा ने सुनाया कि बाप को प्यारे दोनों ही हैं। दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते हैं। दिल नीचे है, ब्रह्मा का जो पार्ट है वो दिल का पार्ट। बच्चे बाबा के सामने आ जाते थे तो बाबा खुशी में बाग बाग हो जाते थे। बच्चे को परखने की बात उतनी नहीं थी। कोई भी बच्चा बाबा के सामने आया, गोद में आया, तो बाबा बस गदगद हो गए। सब कुछ अपना उस बच्चे के ऊपर न्योछावर करने के लिए तैयार रहे। तो ये हुई भावना। लेकिन दिमाग सहित जो भावना होगी, ज्ञान युक्त जो भावना होगी, वो ऐसी नहीं होगी। परखना, परखने के बाद निर्णय करना, और निर्णय करने के बाद फिर बाप बच्चों के ऊपर सरेंडर होते हैं और बच्चे बाप के ऊपर सरेंडर। तो बाप के प्यारे तो दोनों ही है, दिल वाले भी, सिर्फ दिमाग वाले नहीं। यहाँ सिर्फ दिमाग वालों की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। ज्ञान युक्त भावना वाले बच्चे योगी तो आत्मा, क्योंकि जिस योगी में भावना नहीं है उसका वो योग व्यर्थ है। क्योंकि रावण भी शिव का उपासी था, शिव को याद करता था, लेकिन उसमें भावना नहीं थी। क्योंकि भावना बिना शरीर भारी के नहीं हो सकती, दिल वाले के बगैर भावना नहीं हो सकती। सिर्फ बिंदु याद किया तो बिंदु को याद करने से बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, दिमाग बड़ा हो जाएगा, लेकिन दिल के अंदर सिर्फ भावना रहे, सारे विश्व के कल्याण के प्रति भावना रहे, ये नहीं हो सकेगा। तो दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस चाहिए। तो बाबा ने यहाँ सिर्फ दिमागी बच्चों को नहीं लिया, किन बच्चों का कंपैरिजन कर रहे हैं? जो दिल वाले बच्चे हैं सिर्फ भावना वाले, और दूसरे दिल वाले भी हैं तो दिमाग वाले भी। तीसरे प्रकार के उन बच्चों को जो सिर्फ दिमाग वाले, उनको छोड़ दिए, उनकी बात नहीं हो रही। तो दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते हैं, दिल वाले भावना वाले बच्चों को भी देख करके खुश होते हैं, और ज्ञान युक्त भावना वाले बच्चों को भी देख करके खुश होते हैं। फिर भी इतने ही आत्माएं बन बाप को अपना तो बना लिया, किन्होंने? भावना वाले बच्चे पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, कोर्टों में कोई की लाइन में आ गए, कोर्टों में कोई कौन से बच्चे कोर्टों में कोई की लाइन में आ गए? बच्चों की बात है, बच्चे तो पहले ही बन चुके, लेकिन अब क्या विशेषता हुई? बांगले में नई चीजों में बोला कि वो बच्चे करोड़ों पुरुषार्थ करने वाले बच्चों में से ऐसे बच्चे हैं, कोर्टों में कोई जो उस लाइन में आ चुके, वर्ष के अधिकारी बन चुके, उस लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए। कौन से ठिकाने पर पहुंच गए? ठिकाना मानो स्थान, सिर्फ बुद्धि का स्थान। दुनिया की आत्माएं भटक रही हैं, ढूंढ रही हैं, कभी कहां तक पहुंचती है, कभी कहां पहुंचती है, फिर निर्णय करती है यह नहीं यह नहीं यह नहीं। और आप निर्णय पर पहुंच गए, भटकने की स्टेज पर नहीं हो, आप ठिकाने पर पहुंच गए। मान के भटकने से ऐसे नहीं बुद्धि कोई ठिकाना मिल गया कि शिव बाप परम धाम का रहने वाला है, तो आप बुद्धि कहीं इधर उधर भटकाने की बात नहीं गई। अरे बुद्धि स्थिर हो ही नहीं सकती जब तक बुद्धि को सही ठिकाना नहीं मिला है। और सही ठिकाना है क्योंकि मुरली में बोला है, सतगुरु निंदक ठौर न पावे, ठौर माने ठिकाना। तो सतगुरु मिला दलाल, तो दलाल साकार हुआ या निराकार हुआ?
साकार।
दलाल तो साकार हुआ, और साकार के पास तो ठिकाना भी कैसा होगा? ठिकाना भी साकार होगा। निराकार परम धाम की बात नहीं है। जब विनाश होगा तो जो निंदा कराने वाले बाप के बच्चे हैं वो कयामत के समय में बाप के ठिकाने पर नहीं रह सकेंगे। जो बाप ठिकाना तैयार करता है दूर विनाशी धर्म खंडों में सेवा के लिए, उनको जाना पड़ेगा जहाँ मौत ही मौत चारों तरफ बरस रही होगी। लेकिन जिन बच्चों ने पहचान लिया उनके लिए बोला कि तन के भटकने से बच गए, मन के भटकने से बच गए, इसलिए खुश होते हो ना, तो बच्चे भी खुश और बाप भी खुश। खुद किस्मत ऐसे बच्चे बन गए क्योंकि खुद किस्मत वाले बच्चे बन गए دنیا کے حساب سے ڈائریکٹ پاس کے بننے والے. کیا دنیا گاڈ فادر گاڈ فادر تو کہتی ہے, لیکن گاڈ فادر کس کے تھرو؟ کرائسٹ کے تھرو. یا بھگوان بھگوان کرتی ہے لیکن کس کے تھرو؟ دیہداری دھرم گروہوں کے تھرو, منش گروہوں کے تھرو, براہمنوں کی دنیا میں دیدی دادی داداؤں کے تھرو. اور یہاں یہاں تو دنیا کے حساب سے ڈائریکٹ باپ کے بننے والے, کسی کے تھرو بننے والے نہیں. تو بننے والے ہیں وہ برسا بھی تو پائیں گے, ڈائریکٹ باپ کا برسا نہیں پراپت کر سکتے, کیونکہ ڈائریکٹ باپ کا برسا ہے رودرمالا. رودرمالا کے من کے بننا یہ کچھ مٹی بھی ہے, کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جو جانی تو آتما ہے. تو جو ڈائریکٹ باپ کے بننے والے بچے ہیں وہ دنیا کے حساب سے دیکھو کتنی سادھارن آدمی. 500 کروڑ کی دنیا میں سادھارن اور وشیش کا حساب ہے, اور بیسک نالج لینے والے آدھار مورت براہمنوں کی دنیا میں بھی سادھارن اور اسادھارن ब्राह्मण आत्माएं. तो दोनों प्रकार की दुनिया के हिसाब से जो बाप के डायरेक्ट बनने वाले बच्चे हैं वो कितनी साधारण आत्माएं, ये विशेष बंदर है कि वो माला के मन के बनने वाले कितनी साधारण आत्माएं, जो विश्व में सितारे बनकर के चमकेंगे دنیا کی نظروں میں. شکشک کے اسٹوڈینٹ دیکھو کیسے ونڈرفل ہیں, پڑھنے والا پڑھانے والا دونوں اونچ, پڑھانے والا اونچے سے اونچا. کیا بچوں کی نظر میں, دنیا والوں کی نظر میں نہیں, پڑھانے والا اونچے سے اونچا اور پڑھنے والے ہے, پڑھنے والے سادھارن. لیکن سادھارن ہی سادھارن سوروپ میں آنے والے باپ کو جانتے. کیا جو اسادھارن ہے بڑے آدمی بن گئے دنیا کی نظروں میں, پربھتا پائے کا مدن آئی اہنکار آ جاتا ہے. پھر وہ باپ کو سادھارن روپ میں آنے والے باپ کو پہچان ہی نہیں سکتے. باپ دادا بھی وی آئی پی بن کے تو نہیں آتے ہیں نا, ایسے تو نہیں ہے کہ ٹرین میں فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے کر کے آتے ہوں یا جاتے ہوں بچوں سے ملنے کے لیے. تھرڈ کلاس میں ہمیں وہ بھی ریزرویشن نہیں, جنرل کمپارٹمنٹ میں بھیڑ بھاڑ کے نیچے دب کر کے. سادھارن روپ میں آتے ہیں, کوئی پرائم منسٹر وا کسی راجا کے تن میں نہیں آتے ہیں, آتی سادھارن تن میں آتے. اس لیے پہچاننے والے سادھارن ہی باقی پراپت کر لیتے. خوش نصیب ہو کتنا بھاگی ملا ہے, پدما پدم کہنا بھی کچھ نہیں ہے. تو ایسے ہو نا, ابھی جو کو سنکھیا بہت ہے نا, پہلے سوچتے تھے یہ اتنا بڑا حال کس کام میں آئے گا, है? पहले तो बना ही नहीं था, सोचते हैं कहाँ से। तुम जिसकी बात कर रहे हो तो ओम शांति भवन की बात है, अव्यक्त बाप दादा ने की है। पहले सोचते थे ये इतना बड़ा हाल किस काम में आ गया, 3-4 हजार सीट वाला, और अभी क्या लगता है? अभी लगता है इससे भी बड़ा हाल होना चाहिए। तो ब्राह्मणों को ये वरदान है, जितना जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। जो भी आए बाप दादा सबको आने वालों को मुबारक देते, लेकिन सिर्फ क्या नहीं करो, सिर्फ भावुक नहीं बनो, सिर्फ इसलिए ही नहीं बनो, भावना दिल से ही इसलिए ही आता है, इसलिए ही सिर्फ बन गए और ज्ञान युक्त इसलिए ही नहीं बने। तो सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो। पृथ्वी के भी ज्ञानी बनो क्या? ज्ञानी बनो, जड़ का भी ज्ञान हो तो चैतन्य का भी ज्ञान हो। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी है जड़, और परमात्मा है चैतन्य। तो प्रकृति के भी ज्ञानी बनो और चैतन्य के भी ज्ञानी बनो। सिर्फ भावना में बहने की बात नहीं है, ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, लेकिन प्रकृति का भी ज्ञान हो। क्योंकि प्रकृति का ज्ञान नहीं होगा तो प्रकृति का परिवर्तन भी नहीं होगा, और प्रकृति का परिवर्तन नहीं होगा तो विश्व का परिवर्तन भी नहीं होगा। तो आत्माओं के पार की, परमात्मा के पार की, और प्रकृति के पार की, उसमें ड्रामा भी आ जाता है। इसमें है आत्मा परमात्मा, उनका जो पाय सुधा हुआ है प्रकृति के साथ, हाँ पार नहीं, इन तीनों में ड्रामा भी आ जाता है। तीनों का ज्ञान चाहिए, आत्मा का भी, परमात्मा का भी, और ड्रामा का भी, यानी प्रकृति का भी। ब्राह्मण समय काल टाइम, काल चक्र कोई चैतन्य नहीं है, क्योंकि काल चक्र को भी बदलने वाली कौन है? आत्मा। समय को परिवर्तन करने वाले कौन? समय तो जड़ है, जड़ समय को परिवर्तन करने वाली चैतन्य आत्मा। तो तीनों का ज्ञान चाहिए, कहाँ जा रहे हैं और क्या अपने लिए अटेंशन चाहिए। प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज को नहीं, स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति का, तीनों का ज्ञान रखो। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है लाना ही है। ज्ञान स्वरूप मन धूरंदेश त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है, शांत स्थान स्थान का, व्यक्ति का और स्थिति का, तीनों का ध्यान रखो। ज्ञान स्वरूप माना दूरंदेश, त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर तीनों का ज्ञान स्पष्ट नहीं है, किसका किसका, स्थान, स्थिति और व्यक्ति का, तो सफलता नहीं मिल सकती। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है, गलती हो जाती है, कोई न कोई अपथ्य हो जाता है या दवाई लेना भूल जाता है, तो गलती तो अपनी हुई ना, तो बाप दादा उसको ज्ञान योगी नहीं कहते। योगी हो सकता है लेकिन ज्ञान योगी नहीं। ज्ञान का अर्थ है समझ, अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो, आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का ज्ञान सब बुद्धि में हो तो नारे सुनिए। किसका किसका ज्ञान, अपना ज्ञान और शरीर का ज्ञान और वायुमंडल की स्थिति का ज्ञान, तो नारे सुनोगे। इसलिए सिर्फ भावना कर राजी नहीं हो जाओ, आने वाले और लाने वाले, क्योंकि आने वालों की संख्या वृद्धि को पा गई और वृद्धि को ले आए तो लाने वाले कोई महान है, ऐसा समझ लिया। आने वाले और लाने वाले दोनों को नाली फुल होना चाहिए। हाँ, कि हम आए कहाँ हैं और किसको लेकर के आए, सिर्फ संख्या की वृद्धि, ये कोई ज्ञान युक्त आत्मा, ज्ञानी जू आत्मा का काम नहीं है। जो होता है वो तो मीठा ड्रामा ही करें, ड्रामा में कुछ भी कड़वा तो है ही नहीं, तो ऐसे कहेंगे ना, हलचल में तो नहीं आएंगे ना। संख्या भी वृद्धि को हो जाए, क्वालिटी की आत्मा नहीं भी आए, तो ऐसी आत्माओं को देख करके, उनके संसर्ग संपर्क में आकर के हलचल में तो नहीं आ जाएंगे, कि हलचल में आ जाएंगे। ज्ञान की आत्मा है तो हलचल में नहीं आ सकती, क्योंकि बुद्धि में ड्रामा बढ़ता हुआ है। अटल, लेकिन आगे के लिए अटेंशन। बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते, जो हुआ तो ड्रामा कल्याणकारी है, उसमें भी कुछ कल्याण समाया हुआ है। जो अभी भले दिखाई न दे, समय पर प्रत्यक्ष हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही करना है। तो बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते, आने वाले बच्चों को भी मेहनत, तो ले आने वालों को भी कितनी मेहनत होती, इसके लिए तो बाप दादा ने मुबारक दी। जिस आत्मा का जो वर्षा है वो उसको प्राप्त होना ही है। क्या? जिस आत्मा का जो वर्षा है और जितना भी है वो उसको प्राप्त होना ही है। वर्षे से वंचित तो कोई नहीं रह सकता, चाहे वह साधारण सन्मुख है, सन्मुख है साकारण, साकार का अर्थ तो वो लगा देंगे गुलजार दादी में जो बाप दादा आते हैं वो साकार में सन्मुख है, लेकिन गुलजार दादी में जो बाप दादा आते हैं वो तो आकारी अव्यक्त पार्ट है या व्यक्त पार्ट है, उसको साकार पार्ट कहेंगे। शरीर के अंदर तो आते हैं लेकिन जिस शरीर के अंदर आते हैं वो शरीर व्यक्त होता है या अव्यक्त होता है? शरीरधारी ब्रह्मा के तन में आते थे तो ब्रह्मा का तन साकार होता था या अव्यक्त हो जाता था? साकार होता था, खुद भी वाणी सुनते थे। ब्रह्मा यानी दादा लेखराज की सोई गुम नहीं हो जाती तो उसका नाम दिया साकार पार्ट। यहाँ तो जिस तन में प्रवेश करते वो आत्मा ही गुम हो जाती, उसे साबित होता है कि प्रवेश करने वाली आत्मा सूक्ष्म शरीर का होश लेकर के आने वाली मनुष्य आत्मा है। सूक्ष्म शरीर का होश मनुष्य आत्माओं को होता है, प्रवेश करने वाली आत्माओं परमात्मा को सूक्ष्म शरीर होता ही, तो जब प्रवेश करता है तो हल्का फुल्का पता भी नहीं चलता देखने वालों को कि कब प्रवेश किया कब चला गया। जिसमें प्रवेश करता है उसको ही पता नहीं चलता। लिबुली में बोला क्या कि इस ब्रह्मा को पता चलता है? नहीं, मालूम भी नहीं पता। तो क्या साकार में सन्मुख है? किस समय की बात है? कौन सन की बात है? 92 की बात है। तो क्या है साकार में सन्मुख है? तो जरूर कहीं साकार भी पार्टधारी परम पिता परमात्मा है, बाप दादा मौजूद है, चाहे उसके सन्मुख है, चाहे अपने स्थान पर मनमाना भव है बुद्धि युग में, दोनों को वर्षा अवश्य प्राप्त होना है। डबल नाली फुल हो और प्रकृति का या सिर्फ आत्मा के मस्ती में रहते हो, आठ नाली फुल नहीं बनो है? नाली फुल मारे आत्मा और आत्मा चित्तन के द्वारा कार्य करती है वो पांच तत्वों का पुतला प्रकृति का श्रेष्ठ स्वरूप प्रकृति का पुतला दोनों के नाली फुल बनो। उस शरीर को कंट्रोल करने वाला सारथी आत्मा कौन है? उसके भी नाली फुल और उस साधन तन में पार्ट बजाने वाली आत्मा के भी नाली फुल और जो तमो प्रधान प्रकृति का चोला है, तमो प्रधान शरीर जिसमें परमात्मा प्रवेश करता है उसके भी नाली फुल बनो। क्योंकि साधारण तन है तो कर्म भी कैसे करेंगे? साधारण कर्म ही करेंगे। तो हाथ नाली फुल नहीं बनो, फुल बनो। के सर्व खुश नसीब आत्मा। कैसी आत्मा? खुश नसीब, सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता की अनुभवी आत्मा। भावना और ज्ञान दोनों का स्वरूप धारण करने वाली आत्मा। सबका बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्मा। सदा समीप अनुभव करने वाली आत्मा। किसके समीप? बाप दादा के अपने को समीप समझने वाली। बाप दादा कौन और सदा समीप कैसे समझेंगे? अगर बाप शिव को कह दे ज्योति बिंदु को और दादा ब्रह्मा को कह दे तो क्या सदा शब्द लगाया जा सकता है समीपता के लिए? क्योंकि 2500 वर्ष तो क्या 5000 वर्ष तो ज्योति बिंदु शिव समीप होगा ही नहीं। तो सदा समीप अनुभव करने वाली कौन सी आत्मा हुई? बाप और दादा दोनों के प्रति। और बाप दादा कौन हुए? हाँ, राम और कृष्ण की आत्माएं। वो बाप और दादा का पार्ट बजाने वाली आत्मा, यानी मनुष्यों का पिता, जिनकी पहचान भी तब होती है जब उसमें सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु प्रवेश करता है। नहीं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं। उस प्रजापिता को कोई पहचान भी नहीं सकता। और दादा तो मनुष्यों का जो पिता है उसका पहला बच्चा कौन? ब्रह्मा यानी कृष्ण की सोल, कृष्ण बच्चा। मनुष्यों के पिता के बाद वर्षा पाने वाली आत्माओं में सबसे पहली आत्मा कौन सी है? राम कृष्ण वाली आत्मा। राम बाप को कहा जाता है और वो राम को अलग हुआ। वो तो मनुष्य आत्माओं का पिता, मनुष्यों का पिता हुआ। लेकिन वर्षा प्राप्त करने वाले मनुष्यों में पहला कौन हुआ है? कृष्ण की सोल, कृष्ण बच्चा। क्यों? बच्चे से पहले माँ नहीं होती है क्या? हाँ, माँ जो बनाई जाती है वो बच्चों की सेवा के लिए बनाई जाती है। माँ और बाप दोनों ही किस लिए बने? बच्चों की सेवा के लिए। माँ बाप तो अपनी सारी प्रॉपर्टी देना किसको है? बच्चे। तो सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं। किसके समीप? बाप दादा के समीप अनुभव करने वाली सदा माना। पहले जन्म से लेकर के 84 जन्मों के अंत तक जो राम कृष्ण जैसी आत्माओं के साथ सदा साथ रहती, तो जिन्होंने पहले पहचाना होगा वो साथ रहेंगे, या जिन्होंने पहचाना ही नहीं होगा लास्ट में जाके पहचाना होगा तो वो सदा साथ रहेगी, या पहचानने के बाद बीच में गोल हो गई। हाँ, पहचानना और साथ साथ निभाना भी। ऐसे ही भावना में आ गए और पहचान लिया और ज्ञान युक्त नहीं पहचान तो क्या होगा? माया के मुकाबला, ठोकरों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे और वातावरण कोई ऐसा भयंकर बनेगा तो टूट जाएंगे। तो सदा समीप अनुभव करने वाली आत्मा। किसको सदा समीप अनुभव करने वाली आत्मा? सिर्फ संगम युग में सदा समीप है।
5000
वर्ष है, सदा समीपन हो करने वाली आत्मा है, कोई बदल नहीं किया, एक ही संबंध है, सर्व संबंधों में, कभी कोई संबंध, कभी कोई संबंध, ऐसे सदा अटल अटल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद करो नमस्ते। कौन अटल और अडोल रहेंगे? नहीं बताया, जो पहले जन्म से लेकर के आखिरी जन्म तक बाप दादा के साथ रहने वाली आत्माएं रही हैं, तो बाप दादा के संग का रंग भी उन आत्माओं ने समाया हुआ होगा, तो संग रूप में भी वो आत्माएं 84 जन्म या 63 जन्म समीप रहने के कारण राम कृष्ण की आत्माओं को जल्दी पहचानेंगे और साथ भी निभाएंगे। संबंध जोड़ना सहज होता है लेकिन निभाने में नंबर बनते हैं। तो ऐसी ऐसी आत्माओं को बाप दादा का याद कर और नमस्ते, याद प्यार और नमस्ते भी समीप वाली आत्माओं को, दूर वाली आत्माओं को नहीं, जिनकी ये विशेषताएं। आज मधुबन में आई हुई पार्टी में 12 घंटे के अंदर कर्नाटक जोन के 2 बुजुर्ग भाइयों ने अपना पुराना शरीर छोड़ा, इसलिए बाप दादा ने सभी का विशेष अटेंशन खिंचवाया। पुराना शरीर बात हुई, स्कूल शरीर की बात है, फिर यहाँ दे अभिमान के शरीर को छोड़ने की बात है, क्या कोई शरीर के मरने की बात? दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है, एक है संगठन को पीछे हटाना और एक है संगठन को आगे बढ़ाना। तो संगठन की शक्ति क्या किन आत्माओं में होती है, है? संगठन की शक्ति का मूल आधार क्या है? प्योरिटी इज यूनिटी, प्योरिटी नहीं होगी तो यूनिटी, भले सन्यासी वाली ही प्योरिटी क्यों ना हो, ऐसी प्योरिटी गृहस्थियों के मुकाबले तो ज्यादा प्योरिटी रही नहीं करते। प्योरिटी तो है लेकिन जब सन्यासी वाली जो प्योरिटी है उस सन्यासी वाली प्योरिटी को राजयोगियों की जो प्योरिटी है टीचर में रहते कमल फूल समान बनने की प्योरिटी जब क्रैक कर जाए तब सन्यासियों का संगठन टूट जाएगा, क्या उनका संगठन फिर मुकाबला नहीं कर सकता? तो जरूर गृहस्थी आत्माएं जो अभी बाप से राजयोग सीख रही है वो अभी प्योरिटी के हिसाब से गिरी हुई हस्ती में है, गृहस्थी तो है लेकिन हस्ती कैसी है? गिरी हुई हस्ती, गिरी हुई हस्ती, गिरी हुई, तो संगठन संगठन की स्थिति तो संगठन की स्थिति भी गिरी हुई होगी और प्योरिटी की पावर जब बढ़ जाएगी गृहस्थियों की घर गृहस्थ में रहते तो माला भी बन करके तैयार हो जाएगी। तो अभी बात किससे हो रही है? दीदी दादियों से, वो दीदी दादियां
यह सुंदर रहने वाली है या गृहस्थी जीवन से पूर्ववाद खुशवाद है, अलौकिक गृहस्थी नहीं है, है? गृहस्थी नहीं है अलौकिक में, है? अलौकिक माने सूक्ष्म मतन, सूक्ष्म मतन में तो फरिश्ते होते हैं, वहां तो फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ते का सवाल ही नहीं, फरिश्ते तो पवित्र ही होते हैं, क्योंकि उनको कोई फूल शरीर होता ही नहीं, तो बात कहां की है? एक साकार शरीर पर पार्ट बजाते हुए संगठन बनाने की बात है, सूक्ष्म बदन में संगठन नहीं बनेगा, संगठन कहां बनता है? इसी दुनिया। तो यहाँ जो दीदी दादियां वो देखा जाए उनको वास्तव में गृहस्थी कहे या संन्यासी कहे, है? क्यों पति पत्नी के संबंध में नहीं रहते हैं क्या? संन्यासी कभी पति पत्नी के संबंध में नहीं रहते, क्या माता पिता के संबंध में नहीं रहते हैं क्या? मान लो कोई कुमार है कुमारी है, पति पत्नी नहीं है, तो उनका क्या होना चाहिए? माता पिता होना चाहिए। तो सन्यासियों का कोई माता पिता होता है क्या? धनी धोरी। तो दीदी दादियों का कोई माता पिता है प्रैक्टिकल में साकार में कंट्रोल करने वाला? क्यों दीदी दादियों की बड़ी दादी जो है वो माता पिता नहीं है, है? तो सन्यासियों का कोई माता पिता नहीं होता, सन्यासियों का पति पत्नी संबंध भी प्रैक्टिकल में नहीं होता। तो जो खुद सन्यासी है निवृत्ति मार्ग में, वो निवृत्ति मार्ग की तो पवित्रता धारण कर सकते हैं, दूरवाद खुशवाद बन सकते हैं, और जब तक उनकी वो प्योरिटी की स्टेज का पलड़ा भारी है तब तक उनकी यूनिटी भी देखने में जरूर आएगी। तो बोला संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है, संगठन की शक्ति माना प्योरिटी की पावर संगठन को आगे बढ़ा रही है, अच्छी हिम्मत से एक दो को सहयोग देकर वृद्धि को प्राप्त कर रही है। कौन? दीदी दादी आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। क्या संसार में भी गुरु लोग निमित्त बने ना, हिम्मत पूर्वक निमित्त बने ना? इब्राहिम बुद्ध कहे कि अगर हिम्मत ना होती तो निमित्त बन सकते थे क्या? तो आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है, हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए, नथिंग न्यू लगता है ना, बाप दादा पर्दे के अंदर सताश दे रहे लेकिन पार्ट बजाने वाली सिर पर आप आत्माएं हो, बाप दादा पर्दे के अंदर सताश दे रहे हैं। क्यों है पर्दे के अंदर? क्यों पर्दे के अंदर सताश दे रहे हैं? तो डायरेक्ट बाप मिला उनको क्या? पर्दा तो निकला नहीं, कोई न कोई पर्दा है लोकलाज का, अच्छा पार्ट बजाय रही बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर वन उन्हीं आत्माओं को यादगार गुड वार्निंग करते हैं, और वही सरकार कहो प्यार कहो सारे दिन की मुबारक हो जाती है। तो ऐसे लगता है ना, अच्छा ठीक है तब। पूछा सब मन अंदर बाहर से सब ठीक लगता है, हिम्मत से सफलता है। जितनी हिम्मत रखेंगे, हिम्मत से बचे तो मदद बस।